ओम शांति। माताएं खुश हैं सेवाओं में या थकी हैं? नहीं थकी। भाई लोग बहुत खुश हैं? यहां जब आते हैं तो लक्ष्य रखना है कि बहुत कुछ सीख के जाना है और अपनी योग की तपस्या को बढ़ा के जाना है, क्योंकि समस्याएं बढ़ती जाती हैं। बढ़ रही हैं या नहीं? घर घर में बढ़ रही हैं, तो उसमें परेशान भी नहीं होना है और हर समस्या का समाधान ढूंढना है। समाधान है, ऐसा नहीं समस्याएं हैं समाधान नहीं है, समाधान है। और समस्याएं सबसे ज्यादा किसमें आ रही हैं? माताएं बताएं, समस्याएं सबसे ज्यादा आ रही हैं संबंधों में। जो अपने हैं, जो अपने थे, वो पराए होते जाते हैं। माताओं ने जिनको बहुत प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, वही समस्याओं का कारण बनते जाते हैं। तो कुछ चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। हम चलते चलते वहां पहुंच गए हैं, बताओ कहां? ये सभी, ये बात सूक्ष्म सभी को ज्ञात होनी चाहिए। कल्प का अंत होगा ना अब या नहीं होगा? सबके हिसाब किताब भी चुकत होंगे, होंगे? तो जो कुछ 63 जन्मों का छुपा हुआ था अंदर में, आत्मा में नूंधा हुआ है ना, वो छुपा रहता है, अब वो इमर्ज होना प्रारंभ हो गया है। इसलिए अब जीवन में वो समस्याएं आएंगी जो कभी सोची भी नहीं थी। अभी मैं नीचे से ही आया थोड़ी देर पहले, रिकॉर्डिंग के बाद कमरे में पहुंचा तो 10 माताएं बैठी थी और मुझे ऊपर आना था, और माताएं अपनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाना चाहती हैं। एक ने कहा मेरी सारी कहानी सुनो और समाधान बताओ। मैंने कहा भाई आज तो टाइम नहीं, कल सुना लेना। उसको तो मैंने छुट्टी दी, बाकी सबकी 2-2 मिनट में सुनी। एक माता ने एक ही मिनट में बता दिया, गांव का मकान भी बिक गया, शहर का मकान भी बिक गया, बच्चे की नौकरी भी चली गई, खाने पीने को कुछ नहीं रहा है, मैं क्या करूं? इतना ही बस, बाकी डिटेल की जरूरत नहीं। क्यों ये सब हुआ? ये विघ्न जीवन पे चारों तरफ से आ घेरे। ये बहुतों के साथ हो रहा है कि जीवन विघ्नों से घिरता चला जा रहा है और उन्हें कोई समस्या का समाधान नजर नहीं आता। मैंने पूछा योग लगता है? बेचारी देखने लगी मुझे, मैं समझ गया नहीं लगता, नहीं लगता। चिंता इतनी होती है खाएंगे कहां से, अब क्या होगा। मैंने उसे याद दिलाया कि बाबा ने वचन दे दिया है। कौन सा है? दाल रोटी, सब्जी नहीं, सब्जी महंगी है। दाल रोटी खिलाएगा बाबा, सुरेश भाई दाल रोटी खिलाएगा, सब्जी रोटी भी खिला देगा, चावल भी खिलाएगा। परीक्षाएं आती हैं, तो मैंने उसको इतना ही सिखाया, योग भी नहीं लगता। बेचारी के कहा मेरे आंसू आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दो तुम। तो मैंने इतना ही सिखाया कि सवेरे उठ के 21 बार, रात को 21 बार याद करना मैं मास्टर सर्व शक्तिवान और विघ्न विनाशक हूँ। कुछ तो होने लगे, चित्त शांत हो। इसलिए अब सभी को परीक्षाएं देने के लिए भी तैयार होना है। बाबा हम सभी में रोज बल भरते हैं। पहला बल कब भरते हैं? अमृत वेले। देखो आपको भी अच्छा लगा होगा, सितारों की मुरली कल थी परसों? कल थी। बाबा ने एक सुंदर शब्द बोला, वो आसमान के सितारे, तुम धरती के सितारे। सुंदर शब्द क्या था? तुम उन सितारों से महाबलवान हो। याद है? तुम उन सितारों से महाबलवान हो। ग्रह भी तो है ना सितारे, ग्रहों का प्रभाव भी पड़ जाता है, लेकिन तुम उनसे अधिक पावरफुल हो। तो सभी अपनी शक्तियों को पहचान कर चलें। बहुत जल्दी घबरा न जाएं कि क्या होगा। मैं एक छोटी सी बात याद दिलाऊं आपको। बाबा ने कहा, इस पर ध्यान देना सभी, जब बच्चों के सामने समस्याएं आती हैं तो वो समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है, हमें कौन साथ दे रहा है। ये छोटी बात नहीं है, हम इसको पहचाने। केवल हम बाबा के बच्चे नहीं, केवल हम उसे योग लगाने वाले नहीं, वो हमें साथ दे रहा है। लेकिन जरूरत किस चीज की है? अब देखो, मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी याद आ रही हैं। मैं अपनी डायरियों में अच्छी अच्छी बातें लिखता हूँ बाबा की मुरलियों से। मैंने आज सवेरे खोली, मुझे कुछ रिकॉर्ड करना था, तो बहुत सुंदर लाइन पहला खोलते ही आ गई, जो संपूर्ण पवित्र हैं, प्रकृति उनके हर संकल्प को पूर्ण करने में तत्पर रहती है। बहुत सुंदर बात है। इसलिए पवित्र बनना, अपने मन की शक्ति को नष्ट न करना परम आवश्यक है। और जिन आत्माओं ने संगम युग बातों में गुजार दिया, आज की मुरली थी ना, आज तो उस पे थी कि मच्छर मर रहे कहाँ जाएंगे, आज तो होती 2 करोड़ लोग मर गए दूसरे विश्व युद्ध में कहाँ जाएंगे। बाबा ने कहा, ये चिंतन की जरूरत नहीं, अपने बारे में चिंतन करो। लेकिन बहुत लोग, बहुत आत्माएं बाबा का बनने के बाद व्यर्थ चिंतन में बहुत रहती हैं, कहाँ क्या हो रहा है इस चिंतन में ज्यादा रहती हैं, सब कुछ देखने में ज्यादा बिजी रहती हैं, सिवाय स्वयं को देखने के। और जो स्वयं को देखने में बिजी हैं, उन्हें दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं। ये खेल चल रहा है, जो कुछ होता है क्या हम उसे बदल सकते हैं? सोच लो, हमारे यहीं मान लो कुछ होने लगे, क्या हम उसे बदल पाते हैं? प्राय ऐसा दिखाई देता है कि जो हो रहा है वही होना है, कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। जो हो रहा है गलत भी, ऐसा लगता है ये होना है, लाख कोशिश करने पर भी वो ठीक नहीं होता। मैं शांतिवन से ही आया हूँ थोड़ी देर पहले, कहीं गया मैं, मुझे काम था, मधुबन में एक चीज सेट करानी थी किचन में, उसकी कईयों से छुट्टी लेनी होती है, कईयों का कनेक्शन रहता है, तो मुझे सुनाने लगा भाई कि भाई ये हो रहा है, क्या करें, कुछ किया ही नहीं जा सकता। मैं भी जानता हूँ उन बातों को, पर मैं कभी नहीं सोचता क्या करें। मैं एक बात सोचता हूँ सदैव, आप भी सोचते होंगे कि जो यज्ञ का मालिक है कौन, वो बिल्कुल निश्चिंत बैठा है ना, उसकी दृष्टि में कुछ है क्या कि गड़बड़ हो रही कहीं है, बोलो माताएं, उसको लगता है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। तो मैं सोचा करता हूँ जब ऊपर वाला मजे कर रहा है तो नीचे वाले क्यों दुखी हो जाए, सोचने की बात है ना। जो मालिक है, जिसको युग बदलना है, हमारे तो पीछे की जिम्मेदारी, असली जिम्मेदारी तो उसकी है ना, वो बिल्कुल निश्चिंत साक्षी दृष्टा है, बदल भी रहा है और सबके पाठ को साक्षी होके देख भी रहा है। ये स्थिति हमें भी लानी है, तो बहुत ध्यान देंगे। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि हम सभी, अब समय है व्यर्थ में बिल्कुल न रहकर अपनी ईश्वरीय शक्तियों को जमा करें। ये समय भी अगर कोई व्यर्थ में बिता दे तो उसके हाथ पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। जा रही भाई ट्रांसलेशन तेलुगु वालों को, तेलुगु वाले ट्रांसलेशन हो रही है, हो रही है, ओके, ठीक है ठीक है। नहीं तो बेचारे ऐसे ही रह जाते, भावना से क्लास में आते हैं। वारंगल से ही है ना? हाँ, मैं वारंगल से ही तो आया, मेरे बाद आए आप लोग, बाद में आए ना, अच्छा, बहुत अच्छी लहरें हैं वहाँ। बहुत लोग भट्टी करने आए, बारिश भी हुई थोड़ी, 1500 लोग आए भट्टी करने, फुल था सब कुछ उनका, और बहुत अच्छी जगह पर भट्टी थी, ट्रांसलेशन होती थी, साथ साथ बैठ के करते थे वहाँ। बहुत अच्छा किया था, सवेरे भी कमेंट्री से योग, शाम को भी रोज एक घंटा कमेंट्री से योग। उसके अनुभव दूसरों के तो रहे ही होंगे अच्छे, पर मेरे बहुत अच्छे रहे, बैठ के दो दो घंटा, नहीं तो क्लासेज और बीच बीच में योग हम कराते हैं, लेकिन भाषा की बात थी तो ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छा रहा, वातावरण इतना सुंदर था। अभी फोन आते हैं कि सब लोग चार्ज हो गए हैं, जो सोए हुए थे ठंडे हो गए थे, चार्ज हो गए एकदम। और लास्ट में इंटरनेशनल योग था, वो भी कमेंट्री से कराया, उसमें शहर के 50-60 VIP भी बुलाए गए थे, वो योग में ही आ गए थे। कभी कभी आते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया हुआ है। उनका बहुत अच्छा रहा, फिर पौना घंटा लेक्चर का प्रोग्राम रहा। तो मैं ये देखता हूँ सब जगह जाकर कि समस्याएं उग्र रूप लेती जा रही हैं, जिससे बात करो लगता है वो समस्याओं से घिरा हुआ है। किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, और उसमें भी बीमारी बढ़ रही है मानसिक। मैंने पीछे भी शायद यहाँ सुनाया हो, यहीं पीछे ज्ञान सरोवर में ही, जो मेडिकल वालों की डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस थी, तो एक अच्छा डॉक्टर मेरे से मिलने आया, कैंसर स्पेशलिस्ट। मैं उससे कुछ पूछ रहा था बड़े फ्रेंडली कि भाई कैंसर का पता लास्ट में क्यों चलता है, जब कहते हैं तीसरी स्टेज पे पहुंच गई, अब इसका इलाज मुश्किल है, ये करो वो करो, पहले से क्यों नहीं पता चलता। तो उसने कुछ बातें बताई, फिर मैंने कहा आपका सर्वे, आप लोगों का विवेक क्या कहता है, कैंसर रुकेगा या बढ़ेगा, क्या होगा। कहा जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और जो मेडिकल के वैज्ञानिक हैं, उनका विचार है कि कुछ ही सालों में हर घर में कैंसर का एक पेशेंट जरूर होगा। मैंने पूछा क्यों, ऐसी क्या बात है। तो बात वही है, सबकी जेब में क्या पड़ा है, हैं? हाँ, माताओं के पास भी है। ये जो टावर लगे हैं ना ऊपर, इनसे जो रेडिएशन, बुरी तरंगें फैलती हैं इनसे, उसका असर बहुत ज्यादा देही पर पड़ रहा है। आपने देखा हो, अभी सुना हो, एक लड़के ने यहाँ जेब में मोबाइल डाला हुआ था, आपे ही बैटरी फट गई और क्या हुआ, हार्ट के ऊपर का सारा मांस टूट गया, हार्ट दिखने लगा पंपिंग करता। वो व्हाट्सएप पे आया, हमने भी देखा, रखे रखी वो फट गई। चाइना के जो सस्ते मोबाइल लेते हैं ना लोग, उसका ये रिजल्ट रहता है। तो जहाँ सुखकारी चीजें आई हैं ये, वहीं बहुत कष्टकारी भी आई। और युवक ही था, छोटी आयु का, एकदम उसका ये सब फट गया और दिल दिख रहा था धड़कता हुआ। हमने पहली बार देखा दिल कैसे धड़कता है, वो साफ साफ दिख रहा था। तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जाएंगी। अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियां भरनी है। जितना भी जिसको समय मिले योग करें। योग बल संसार का सबसे बड़ा बल है या नहीं? लेकिन व्यर्थ से योग का बल समाप्त होता रहता है। कोई रोज सवेरे उठकर योग भी करता हो, मुरली में भी बहुत अच्छा ध्यान से करते हो, शाम को भी योग करते हो, लेकिन अगर व्यर्थ बहुत रहता है तो ये सब निष्फल चला जाता है, कोई फायदा नहीं होता। तो इन सब से बचना है, बहुत बचेंगे व्यर्थ से, और अपने मनोबल को बहुत बढ़ा कर रखेंगे। कोई आपके बारे में कुछ बोले, कोई परिवारों में घटना हो जाए, तो अपनी शक्तियों में विश्वास रहे कि ये सब ठीक हो जाएगा। बाबा में भी पूरा विश्वास रहे कि ये सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैंने भी कल एक अच्छा प्रयोग किया। रोटी की मशीन लेनी थी पांडव भवन के लिए, क्योंकि वहाँ पार्टियों को भोजन खिलाया जाता है, आप जानते हैं, और रोज 3,000-4,000 लोग आ जाते हैं। तो दोपहर में उन्हें रोटी मिलती नहीं, दाल चावल खाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चावल नहीं खाते, शुगर वालों को मना होता है। तो फिर क्या होता है, वो विदेशी ऊपर खाना खाते हैं ना, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। मालिक है ना वो तो, बाबा के बच्चे, और मालिक बन के पहुँचे और खाना लिया। अब वहाँ किस किस को मना करें, कोई तेरा आ रहा, कोई मेरी पार्टी है, मेरे संबंधी तेरे, सब पहुँच जाते हैं। तो थोड़ा झंझट हो जाता था, डिस्टरबेंस हो जाता था, किसको रोकें किसको नहीं रोकें। तो मशीन काफी महंगी होती है, वो बड़ी शांतिवन में जिन्होंने देखा है जानते होंगे, रोटी बनती है। तो फाइनल बात वहां पहुंच गई जिससे सहयोग मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं सोचा अब तो ये पास नहीं होगा भाई, क्योंकि बिल रुका हुआ था। पास तो 6 मास पहले करा दी थी, लेकिन बिल रुका हुआ था। तो मैंने बाबा को कहा कि देखो, आवश्यकता है न मुझे चाहिए न किसी व्यक्ति को चाहिए, यज्ञ की बहुत अच्छी एक सेवा होगी, बाबा के बच्चे आते हैं, उन्हें रोटी मिले तो कितना अच्छा होगा। और मशीन ऐसी चीज है, अगर ताजी रोटी खिलाई जाए तो तवे वाली रोटी से भी अच्छी बनती है, वो तो रखने के बाद धीरे धीरे ठंडी होके दूसरा रूप हो जाता है उसका। तो मैंने बाबा को कहा, और जिसको भेजा गया था उससे मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, भले ले लो, जरूरत है तो कोई बात नहीं, केवल गैस तैयार हो जाए, वहाँ गैस का प्रबंध हो जाए, क्योंकि गैस बहुत खर्च हो रही है और कलेक्टर से कुछ परमिशन लेनी होती है, हमने पहले ही बहुत ले ली है और आगे नहीं हो सकता। तो मैंने देखा कि बाबा को समर्पित कर देने से वो व्यक्ति जो किसी को सहयोग नहीं करते, उन्हें फट से हाँ कह दी। ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई कि बाबा के आगे समर्पित भाव से जीना है। समर्पित भाव बहुत बड़ी चीज है। जहां मैं और मेरा ज्यादा रहता है वहां बाबा की मदद से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए सभी को सूक्ष्म पुरुषार्थ करते हुए स्वयं को मैं और मेरे की दीवारों से मुक्त करना चाहिए। ये हमारे मार्ग में दीवारें हैं। जब तक एक माँ सोच रही है मेरे बच्चे, तब तक वो भारी है। और जिस क्षण वो सोचती है, क्या कहने के लिए या सचमुच बाबा के हैं या आपके? एक माता की और कहानी सुना दूं, दो दिन पहले की है। दो बच्चे हैं, छोटा बच्चा 20 साल का शराब पीने लगा, बड़ा लड़का उससे 2-3 साल बड़ा, उसको छुआछूत की बीमारी लग गई। मतलब सारा दिन हाथ धोता है और नहाता है जब तक टंकी का पानी खाली ना हो जाए। कहा अब मैं क्या करूं, पति शरीर छोड़ गया, दोनों कुछ काम नहीं करते, अब मैंने कहां से खिलाऊं, केवल मकान का किराया आता है उससे मैं घर चलाती हूं, अब मैं क्या करूं। बेचारी, इसको भी आंसू आ गए। मैं फिर उसको थोड़ा नॉर्मल किया, थोड़ा हंसाया, तुमने तो कहा था भगवान को लड़के देना, बाबा अच्छे से दो लड़के दे दो, अब तुमने कितनी कामनाएं की थी, दो लड़के मिल गए, ये तो नहीं कहा था ना चरित्रवान दे दो, लड़के देना। मांगती है माताएं सद्बुद्धि वाले, देना लड़के देना। मैंने कहा लड़के दे दिए, अब संभालो उन्हें। कहा संभालूं क्या, अब तो मुश्किल हो गया, मैं तो सोचती हूँ कोई ना होता तो कितना अच्छा होता। मैंने कहा ये तो अब सोचती हो ना, पहले सोचती तो कितना अच्छा होता। ये ऐसी समस्याएं हैं आजकल, ये नहाने की समस्या, हाथ धोने की समस्या, ये मेरे पास भी आती रहती है। मास में 3-4 केस ऐसे आते हैं, खुद आती हैं बहनें, मैं बहुत हाथ धोती हूँ, सारा दिन धोती हूँ, फिर भी लगता है हाथ गंदे हैं। किसी का लग गया तो हाथ धोई, भागी भागी हाथ धोऊंगी। अब वो स्किन भी तो खराब हो जाती है ना बार बार, वो भी साबुन से। अब इसका क्या करें, डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आता और हमारी भी समझ में नहीं आता। हेमसिंह तुम्हारी आता है? हाथ धोने की सुरेश भाई, हाथ धोने की बीमारी का क्या इलाज हो? मैंने कहा भाई मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है, साइकेट्रिक। कहा वो भी कहते हैं भाई इसका क्या करें, हम दवाई खिला देते हैं, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए दवाई देने के लिए, कोई इलाज नहीं। तो ऐसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो क्या करें? मैंने ये बात आपको क्यों सुनाई, समर्पण भाव। अब सुख से वही जिएंगे जिनमें समर्पण भाव और साक्षी भाव होगा। सब कुछ तेरा, बच्चों को भी कर दो तेरे, और देखो परिणाम कितना अच्छा होगा। हो सकता है, अब माताओं से नहीं पूछूंगा, भाई जो फादर बैठे हैं वो बताओ, हो सकता है? हो सकता है? सब कुछ तेरा, माँ भले कहे मेरे पर आप तो कह दो तेरे। इसमें भाई लोग तंग नहीं रहते, वो तो सोचते हैं बच्चे हैं जो चाहे करो, हमारा काम पूरा हो गया, पढ़ा लिखा दिए, शादी करा दी, अब तुम जानो हम क्यों परेशान हो। लेकिन माताएं जरा ज्यादा परेशान होती हैं। माताएं सोचती हैं जब तक हम जिंदे हैं हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन 2-4 माताएं मुझे ऐसी भी मिली अच्छी, सच्ची कहानी है, जिन्होंने कहा हमको 4 बच्चे, चारों की शादी वादी हो गई, अपने काम धंधे में लग गए। मैंने कहा भाई मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे एक कमरा दे दो और बस मैं अपना खाना बनाऊंगी, बाबा की सेवा करूंगी। सबसे ऊपर बच्चों ने एक कमरा दे दिया, माताजी मस्त रहती है, ज्ञान योग करती है। कहा मैं उनके किसी झंझट में नहीं जाती, नहीं तो आज पोतरा बीमार हुआ, आज उसकी शादी में गड़बड़ हो गई, कहा मैं सब छोड़ दिया। यहाँ भी कुछ माताएं बैठी हैं, सूरत वाली बैठी है, भाई बैठे हैं, बार बार सेवा में आते हैं ना, कितना सुंदर डिसीजन है अपने भाग्य निर्माण करने का। जो फंसा रहे सो फंसने के तो अनेक जंजाल है ना दुनिया में, जंजाल मनुष्य खुद भी बना के फंस जाता है, लेकिन जो अपने को मुक्त करे वही बुद्धिमान। माताओं को भी अपने को मुक्त करना चाहिए। किस किस की जिम्मेदारी लेंगे? हंसी कहानी सुना दूं माताओं की। एक 82 साल की बूढ़ी माता मेरे पास आई पिछले से जन्म में, कहा मुझे नींद नहीं आती। लाए उसको उसके साथ ही, मैंने कहा क्या हुआ है? मैं सोचा कोई बीमारी हो, बेचारी बुजुर्ग हो गई, 82 साल की माताएं तो आजकल बहुत ढल जाती है ना, तो क्या बताया होगा उसने। सुनो हंसी की बात, मेरी लड़की की लड़की की लड़की, चौथी पीढ़ी, वो 9 साल की है, वो पढ़ती नहीं है, मुझे उसकी बहुत चिंता है, उसका क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, उसकी चिंता है ना तुम्हें, तुम ये बताओ जब तुम छोटी थी कितना पढ़ी थी? कहा हमारे जमाने में तो स्कूल ही नहीं थे। मैंने कहा फिर तुम्हारा क्या हुआ? तुम नहीं पढ़ी तो तुम्हारा कुछ हुआ या नहीं? तो देखो कहाँ कहाँ तक मनुष्य चिंता करता है। हम माताओं का जाल बढ़ता जाता है, बच्चों के बच्चे, लड़कियों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो लंबी आयु मिल जाए तो जंजाल बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अब भाग्य बनाने का समय है, इसलिए स्वयं को कहीं भी उलझाना नहीं है। सभी सेवाधारी भाई बहने बाबा से मिलके ही जाएंगे ना, हैं, या पहले जाएंगे? बाबा से मिलके जाएंगे। बाबा से अच्छा मिलन किसका होगा? अब मैं एक प्रैक्टिकल बात पर आ जाऊं जरा। बाबा से हम सबको मिलना है, और हम सब क्या देख रहे हैं कि बाबा का पाठ पूरा हो रहा है। इस बार और साफ दिखाई दे जाएगा कि खेल पूरा हो रहा है। ये बाबा को जो कुछ देना था उसने हमें दे दिया है, अब तो वो उसका रिजल्ट चाहता है ना, क्योंकि दादी की तबीयत कैसी है, बहुत बुजुर्ग हो गई, ढीला होता जाता है सब कुछ, जिस ब्रेन को बाबा यूज करते हैं वो भी तो वीक होता जाता है ना दिनों दिन, तो बाबा उसे बहुत यूज नहीं करेगा। तो हम क्या करें जो बाबा का बहुत सुंदर अनुभव हो, बाबा आधे घंटे के लिए भी आए और हम भरपूर होकर वापिस आए, थोड़ी इस पे चिंतन कर लें। तो सभी को कुछ करना है। आज क्या तारीख हो गई? 26 तो 15-16 दिन बचे हैं। इन दिनों में अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि बाबा का मिलन इस चीज पे निर्भर करता है कि हम क्या हैं, हम वहां किस स्थिति में बैठते हैं, पहले से हमने क्या किया है। केवल उस दिन करें इतना ही काफी नहीं होता, पहले से हमने क्या किया है, क्या हमने वो सब किया है जो बाबा चाहते हैं, क्या हम वो सब कर रहे हैं जिसके द्वारा बाबा के आगे के कार्य संपन्न होंगे। उसने हमें इतने साल पाला है, अब वो पालना का रिटर्न चाहता है कि जैसे मैंने तुम्हें पाला अब तुम दूसरों की पालना करो। तो हम उसके लिए स्वयं को तैयार करें। तो क्या करेंगे आज से 15-16 दिन? मैं सभी को कहूंगा अपनी अपनी सेवाओं के अनुसार, सभी माताएं भी चार बार तो बाबा के रूम में बैठे, चार बार योग में बैठे है। ऊपर भी है सब्जी रोटी के पास, इधर भी बाबा का रूम है, यहाँ भी योग होता है। सवेरे शाम काम करके यहाँ योग करें, अच्छा। जिनका योग कम लगता है वो भी योग करने का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि योग ऐसा सब्जेक्ट है जो अभ्यास करने से सरल हो जाता है। स्वमान का अभ्यास करें, पांच स्वरूपों का अभ्यास करें। जानती है ना माताएं ये सब, जब भी यहाँ योग में आकर बैठें तो पांच स्वरूपों का अभ्यास करें। भाई लोग भी जिनका योग कम लगता हो वो पांच स्वरूपों के अभ्यास से शुरू करें, तीन बार कर दें, उससे मन एकाग्र हो जाएगा और फिर शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाएगा। एक काम सबको ये करना है। दूसरा, अपने किसी विशेष संस्कार को चेंज करने का दृढ़ संकल्प कर लें। हर एक का अपना अपना, ये संस्कार मेरे मार्ग में बाधक है, ये चीज मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है, किसी में कोई कमजोरी, किसी में कोई कमजोरी, उसे भरने का दृढ़ संकल्प कर लें तो बाबा की बहुत मदद मिलने लगेगी। बोलो स्वीकार है? ये सब स्वेच्छा से करेंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर कर लें तो बाबा तो सब देखता है, जानता है, तो बाबा हमारे परिवर्तन पर बहुत प्रसन्न होता है। हम परिवर्तन लाते हैं जीवन में, बाबा को प्रसन्नता होती है। याद हो आपको उस दिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, बड़ी मजेदार लेकिन रहस्य भरी। तुम्हें पतित से पावन बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। सोच लेना इसके रहस्यों को। जैसे किसी धोबी को मैले कपड़े धोने में बड़ा मजा आता हो, जब वो साफ हो जाते उन्हें देख के वाह कितने साफ कर दिए मैंने इनको, तो बाबा भी बड़ा आनंदित होता है। और आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं आनंद का सागर हूँ तो तुम भी आनंद के सागर बन जाते हो, सबको सुख देते चलो। आनंद अंदर में भरपूर होगा तो हम सबको सुख देंगे। तो बाबा से मिलने के लिए व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने का लक्ष्य बनाएं सभी। जहां जहां व्यर्थ में रुचि होती हो, व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं मनुष्य को, रुचि है उसमें। लेकिन आजकल एक बात और हो गई है, इस बात को भी सभी को गौर करना है, बहुतों के साथ हो गई है और ये बढ़ती जाएगी। एक बार कोई संकल्प आ गया व्यर्थ, वो रुकता नहीं, वो इतने फोर्स से चलता है कि चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं और इससे बहुत दुखी होते हैं। स्टूडेंट्स की बहुत फोन आते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अभी भी रास्ते में हम आ रहे थे, एक का फोन आ रहा था, मेरे से जरूर बात करो। बीटेक फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है और मेरी एकाग्रता बिल्कुल नहीं हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ कुछ भी याद नहीं रहता। आज ही तीन फोन ऐसे आए मेरे पास, एक तो 10वीं क्लास के छोटे लड़के का ही था और दो ये बीटेक वालों के। तो ये समस्या भी संसार में बढ़ रही है व्यर्थ संकल्पों की, और इसके जिम्मेदार कौन है? नहीं, मोबाइल भी नहीं उनके। मैं उनसे पूछता हूँ, किसी गलत मार्ग पे तो नहीं चले गए? का बिल्कुल नहीं, हमारा फाइनल ईयर है, फाइनल एग्जाम है, हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है। आजकल भारत में ये बात आने वाली है, मोबाइल फ्री स्कूल, स्कूलों में मोबाइल ले जाना मना हो जाएगा थोड़े ही दिनों में, क्योंकि बच्चे घर बात करते रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो इसके कारण मैं आपको गहराई में ले जाना चाहता हूँ। वो तो मोटी बात है मोबाइल और ये वो, इसके कारण है ब्राह्मण, ब्राह्मण बीज हैं, ये हमें भूलना नहीं है। अगर ब्राह्मण व्यर्थ में रहेंगे तो संसार में अनेक लोग व्यर्थ के शिकार हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको ध्यान दिला रहा हूँ, अपने व्यर्थ को समाप्त करते चलें। कौन क्या कर रहा है उसे करने दो, मैं क्या करना, मुझे क्या करना है, इस स्वचिंतन में जाना है। क्योंकि अगर व्यर्थ को अब हम न रोक पाए, ध्यान से सुन लें, यदि कोई ब्राह्मण आत्मा इस समय व्यर्थ को न रोक पाए तो आने वाले समय में उसका व्यर्थ उसके लिए भयानक सजा बन कर आएगा, उसका व्यर्थ उसको सोने नहीं देगा। जैसे आजकल बहुतों को होता है ना, जब योग में बैठते हैं तभी संकल्प चालू होते हैं, पहले नहीं थे। अब ये हो जाएगा, जब रात को सोने जाएंगे तभी व्यर्थ संकल्प प्रारंभ हो जाएंगे, प्रकोप सोने नहीं देंगे। इसलिए केयरफुल्ली अटेंशन दें सभी, व्यर्थ से बचने का अंतिम समय है। आगे भयानक समय आएगा, जो अपने को व्यर्थ से मुक्त करेंगे वो अनेकों को व्यर्थ से मुक्त कर पाएंगे। मैंने जो आपको पहली बात बताई ये बहुत ही राज भरी बात है। जैसे कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है, हम भी, हमारा भी एक एक कल्प वृक्ष है। बाबा के महावाक्यों के अनुसार जैसे लोग कहते हैं सितारों में भी दुनिया है, तुम एक एक चेतन सितारे की भी एक एक दुनिया है। किसी की दुनिया में 1,00,000 लोग, किसी की दुनिया में 50,000, समझ रहे ना मेरी बात। हमारी स्थिति का प्रभाव हमारे उस संसार पर पड़ता है। हम अलबेले तो हमारा सारा संसार अलबेला, हम व्यर्थ में तो हमारा वो संसार भी व्यर्थ में। हम सवेरे सोएंगे सब सो जाएंगे, और हम योग में सोएंगे, माता अब भी सो गई एक दो, हम योग में सोएंगे तो सारी वंशावली सो जाएगी। इसलिए अटेंशन देना, हम खुश होंगे तो हमारा वो सारा संसार खुश रहेगा। इसलिए बहुत बड़ा पुण्य हम करें, ये सूक्ष्म गति है, बहुत बड़ा पुण्य स्वयं की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना। हमारे पुण्यों की गति बहुत गुह्य है। मैं बाबा का एक महावाक्य यहाँ क्लास में कई बार सुनाया है, मैं अपने को भी सुनाता रहता हूँ। तुम हो पूर्वज, सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो। अब ध्यान दे इस महावाक्य पे, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। सोचे आप सभी, हम पूर्वज हैं, हमारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, तो उसका फल हमें पदम गुना मिल जाता है। क्लियर है ये बात? इसलिए अगर हम पुण्य करते हैं, माताएं बहुत ध्यान दें, यदि आप पुण्य करती हैं तो आपका परिवार निर्विघ्न रहता है, और अगर आपसे पाप होता है तो उसका प्रभाव आपके परिवार पर पहले आता है, संसार पर भी जाता है। आप सोचेंगे हम तो कोई पाप नहीं करते, परंतु पाप की गति अति सूक्ष्म, ईश्वरीय आज्ञाओं की अवज्ञा करना भी सूक्ष्म पाप है। मान लो बाबा ने कहा तुम्हारा समय बहुत कीमती है, इसे नष्ट न करो, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत मान है, इसे नष्ट न करो, और हम समय यूं ही गंवाते हों, हम व्यर्थ संकल्पों में रहते हों, तो ये सूक्ष्म पाप है। याद दिला दूं आपको बहुत पहले की मुरली, बाबा से प्रश्न पूछा गया था कि अमृत वेले व्यर्थ चलता है, अमृत वेले नींद आती है, अमृत वेले योग में मजा नहीं आता, तो बाबा का उत्तर, दिन में क्योंकि तुम ईश्वरीय अवज्ञा करते हो सारा दिन, इसलिए सवेरे के समय माया तुमसे बदला लेती है। इसका बहुत ध्यान देना है। अगर योग में सदा ही नींद आती है, कभी कभी आई उसकी कोई बात नहीं, आप थके हैं नींद आ गई, रात को ठीक से सोए नहीं नींद आ गई, वो अलग बात है, लेकिन योग में बैठते ही नींद आ जाए, एक मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजा और उसमें भी सो गए, ये कईयों का हाल है। मैं देखता हूँ वैसे चुस्त बैठे और योग का गीत शुरू होते ही गर्दन झुकने लगती है, अभी शुरू ही हुआ है, क्यों? ये रहस्य जानना चाहिए। जानकी दादी ये रहस्य बताया करती थी, तब से हमने भी सीखा, सूक्ष्म पापों का बोझ सिर पर बहुत है, इसलिए वो योग का सुख लेने नहीं देता है। इसलिए हम सभी पुण्य आत्माएं हैं, हम पाप आत्माएं नहीं हैं, हम पुण्य आत्माएं हैं, हमसे कोई सूक्ष्म पाप भी नहीं होना चाहिए। और सूक्ष्म पाप है मुख के द्वारा कटु वाणी बोलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाना, और इसका पता भी होना चाहिए। कई लोग दूसरों को कष्ट देते रहते हैं और उन्हें इसका पता नहीं चलता, ये और बड़ा बुद्धि का क्या हो गया, ये दल बुद्धि हो गई, जिसको ये भी पता नहीं कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। दूसरी स्थिति होती है कि मनुष्य को अपनी गलतियों का पता चले और वो उन्हें बदलने की सोचे, और तीसरी है कि गलतियों का पता चला और बदला। तो हमें अपनी गलतियों का पता चलना चाहिए और बाबा के आने तक हम अपनी स्थिति बहुत अच्छी बनाकर फिर बाबा के सामने हाजिर होंगे। लक्ष्य बना लें सभी कि हम कुछ करके मुंह दिखाएंगे बाबा को, सोचने की बात है ना अच्छी, कि बाबा ने हमारी इतनी पालना की है, हम कुछ करके उसके समक्ष जाएंगे। तो ऐसी उमंगों के साथ जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो बाबा की बहुत सारी मदद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। बाकी इस बार देखेंगे बाबा का स्वरूप कैसा रहता है, बाबा कितनी देर हमसे मिलते हैं और बाबा की पालना किस तरह होती है, क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है अव्यक्त पाठ समाप्त होगा, उसकी निशानी होगी जब बाबा आएगा और मुरली नहीं चलाएगा, केवल दृष्टि देगा, तब समझ लेना अब ये पाठ समाप्त हो रहा है। तो हम उस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और मैं एक बात के लिए सावधान कर देता हूं सबको, दो मिनट बचे हैं। जैसे यज्ञ में शुरू में याद हो सबको, 50 से पहले, सेवा प्रारंभ होने से पहले यज्ञ को वैगरी पाठ से गुजरना पड़ा था, उसमें कच्चे निकल गए थे, पक्के बच गए थे, ऐसे ही अब प्रत्यक्षता से पहले इस यज्ञ को कुछ अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, उसमें अनेक कच्चे संशय बुद्धि निकल जाएंगे और अच्छे अच्छे बाबा के रतन जय जयकार का पार्ट बजवाएंगे, उसमें मुख्य रोल प्ले करेंगे। इसलिए अपने निश्चय को भी संभाल के रखना है, समझ गए ना ये भाषा। संशय की कई बातें आएंगी, परंतु किसी भी बात से हमारे मन में संशय न हो, परीक्षाओं में हम फुल पास हो, हम फेल न हो जाएं, हमारी स्थिति डगमग न हो, ये सब भी हमें बहुत ध्यान रखना है। तो सभी 16 दिन में अच्छी तैयारी करेंगे। सोच लो, भगवान से मिलने जाना है तो कुछ करके जाना है। ठीक है, ओम शांति।